स्वागत है आपका भूतकाल में। मैं हूं आपकी होस्ट लिमरा जमाल सिद्दीकी और इस शो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी अनकही अनसुनी घटनाओं की जो हम सबकी समझ से परे हैं। आज की ये कहानी मृणालिनी देवी की है। मृणालिनी देवी की ये कहानी उनके पिता की मृत्यु पर आधारित है। उनका कहना ये है कि उनके पिता की मृत्यु किसी मामूली कारण जैसे मोटर गाड़ी के एक्सीडेंट से नहीं बल्कि छलावे के छल से हुई थी और ये पूरा वाक्य उन्होंने अपनी आंखों से अपने पिताश्री के साथ देखा था। ये कहानी राष्ट्रीय हाईवे नंबर 33 पर घटित है। यह हाईवे रांची से जमशेदपुर की ओर जाता है। इस हाईवे पर कोई ना कोई ऐसी घटना रोज़ ज़रूर घटती है जो सुर्खियां बटोर लेती है। इस हाईवे पर लोग सिर्फ सुबह या दोपहर को ही सफ़र करते हैं, रात को इस हाईवे पर कोई सफ़र नहीं करता। इस हाईवे पर लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा साया है जो उन्हें गुमराह कर देता है। इस हाईवे को भारत का सबसे ज़्यादा डरावना हाईवे कहा जाता है। मृणालिनी देवी की कहानी भी इस हाईवे पर ही घटित है। मैं अपने पिता के साथ रांची किसी काम से गई थी उस दिन। हमारा काम रांची में पूरा होते ही हम रांची से निकल गए। हम हाईवे पर जा रहे थे। उस समय वहाँ हाईवे नहीं था बल्कि एक कच्ची सड़क थी। गांव वालों का कहना था कि उस कच्ची सड़क पर कभी भी रात को कोई नहीं गुजरता क्योंकि उस कच्ची सड़क पर कुछ ऐसा साया है जो लोगों को गुमराह कर देता है और उनकी जान ले लेता है। मेरे पिताश्री इन बातों में विश्वास नहीं रखते थे, मगर उन्हें उस हाईवे पे जाते वक्त शाम को ये डर लग रहा था कि कहीं हमारे पास कोई चोर या लुटेरे ना आ जाएं और हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दें। यह चिंता मेरे पिताजी को खाए जा रही थी। उस हाईवे पर चलते चलते शाम हो गई। 5 बज चुके थे और सर्दियों का मौसम था तो अंधेरा भी होने लगा था। मेरे पिताश्री की चिंता बढ़ने लगी थी। थोड़ी दूर चलते ही हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा घर था। मेरे पिताश्री ने कहा, चलो आज रात इसी घर में गुजार लेते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते हम घर के दरवाजे की ओर आ चुके थे। मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब ना मिला। पिताजी ने दरवाज़े को हल्का सा धक्का मारा और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हमने सोचा क्यों ना हम आज की रात इसी घर में बिता लें, इसलिए हम दोनों अंदर घुस गए और दरवाज़े को बंद कर दिया। उसके बाद हमने सोने की तैयारी की। मैं थोड़ी देर सो गई, परंतु जब मैं उठी तो मुझे पिताजी से पता चला कि वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए। मुझे लगता है उन्हें कोई तनाव रहा होगा इसलिए वह बिल्कुल भी सो नहीं पाए। वक्त काटना अब मुश्किल हो रहा था। 1 घंटा हो गया था शायद उस घर में जागे हुए मुझे। यह सोचकर पिताजी ने बोला, अरे तुम्हारे पास मेरी घड़ी है? मेरे पिताजी की घड़ी मेरे पास थी। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा ज़रा समय तो बताना। मैंने घड़ी की तरफ देखा और पिताजी को बताया कि 4 बज चुके थे। पिताजी ने भी घड़ी की तरफ देखा और बोला, हाँ 4 तो बज गए हैं, अब बाहर सुबह हो गई होगी। मैं और पिताजी जैसे ही घर से बाहर निकले, हमने देखा बाहर सुबह हो चुकी है। घर के आसपास चिड़िया की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि घर जंगल के बीच में था। हम थोड़ी दूर जैसे ही घर से गए, अचानक अंधेरा सा छाने लगा। चिड़िया की आवाज़ें भी धीरे धीरे बंद हो गईं। यह देखकर हम चौंक गए। पिताजी ने बोला, घड़ी की तरफ एक बार देखो फिर से, क्या समय हुआ है? मैंने जैसे ही देखा तब 3 बज रहे थे। मैंने पिताजी को भी ये बात बताई, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से देखा तो 3 ही बज रहे थे, जबकि घर के अंदर तो हमने देखा था कि घड़ी में 4 बज रहे हैं। पिताजी ने बोला, शायद घड़ी खराब हो गई होगी, घर के अंदर वापस चलते हैं। हम जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए मुड़े, वहाँ कोई घर था ही नहीं, जबकि अभी तो हम घर से बाहर निकले थे। पिताजी ने कहा, चलो बेटी यहाँ से चलते हैं। मैंने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पिताजी और मैं, जो घर वहाँ था ही नहीं, उससे काफ़ी दूर आ चुके थे। हम गांव की तरफ वाली सड़क पर चल रहे थे। पिताजी बोले, अगर हम चलते रहे तो थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हम घर भी पहुँच जाएंगे। यह बात सही थी, मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना था। ये जगह मुझे भी ठीक नहीं लग रही थी। गांव की सड़क पर चलते चलते कुछ दूरी पर हमने एक साया देखा। वह साये को देखकर मैं डर गई। मैंने पिताजी का हाथ और कसकर थाम लिया और पिताजी उस साये को घूरते ही रह गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और हम लोग उस सड़क से पीछे मुड़ गए। सड़क पर चलते चलते अचानक पिताजी के रंग ढंग बदलने लगे। पिताजी ने एकदम से मेरा हाथ छोड़ा और वह भागने लगे। उनके आगे साया खड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, पिताजी रुक जाइए, वहाँ मत जाइए, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, आप साये की तरफ क्यों जा रहे हैं? पिताजी वहाँ मत जाइए। उसी क्षण एक मोटर गाड़ी आके पिताजी से टकरा गई। पिताजी के मोटर गाड़ी से टकराते ही मोटर गाड़ी अपने आप रुक गई। मोटर गाड़ी के मालिक घबराते हुए बाहर आए। उन्होंने पिताजी की धड़कन महसूस करने की कोशिश की, मगर शायद तब तक उनकी धड़कन बंद हो चुकी थी और पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मोटर गाड़ी के मालिक को मैं जानती थी, वह हमारे गांव के सरपंच थे। मैं जब थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, बेटी तुमने क्या मोटर गाड़ी आती हुई नहीं दिखी? तुमने अपने पिताजी को मना क्यों नहीं किया कि पिताजी रुक जाइए, वहाँ मत जाइए, मोटर गाड़ी आ रही है? मैंने बोला कि सरपंच जी, मुझे आपकी गाड़ी तो बिल्कुल भी आती हुई नहीं नज़र आई। उन्होंने बोला कि तुम्हें शायद गाड़ी ना दिखी हो, पर तुम्हें कोई बत्तियां तो दिखी होंगी, रोशनी तो दिखी होगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई बत्ती और कोई रोशनी नहीं दिखी, शायद पिताजी को भी नहीं दिखी होगी, इसलिए वह आपकी मोटर गाड़ी से टकरा गए। उन्होंने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें वो सब बता दिया जो हमारे साथ हुआ। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझे गले से लगाया, गाड़ी के अंदर बिठाया, पिताजी की लाश को पिछली सीट पर रखा और वह वहाँ से झट निकल गए। गाँव पहुँचने के बाद हमसे पुलिस ने पूछताछ की। मैंने पुलिस को सब बता दिया जो हमारे साथ हुआ था। पुलिस को मुझ पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा मैं कोई बच्ची हूँ जो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हूँ। पिताजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया कि पिताजी की मृत्यु गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर से हुई। उनका दिल इतना तेज चल रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता था।
राष्ट्रीय हाईवे 33 की ऐसी पहली कहानी थी जिसका कोई चश्मदीद गवा रहा हो। ये कहानी काफी सुर्खियों में रही और इसके बाद ऐसी कई और कहानियां राष्ट्रीय हाईवे 33 के बारे में आई। ये सिर्फ एक कहानी है। हम जानते हैं आपके पास भी ऐसी कई और कहानियां होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानियां सबको सुनाएं, तो हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कीजिए अपनी कहानी, या फिर आप हमारी सुविधा पर भी संपर्क कर सकते हैं जिसका नंबर है 924924। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अगले रविवार फिर मिलूंगी एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए हमारे रेडियो चैनल पर बने रहें।
हेलो
हेलो
हेलो, मैं मिसेस सबिया सिद्दीकी बोल रही हूँ, वाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर। मैंने आपसे वो रिपोर्ट लिखवाई थी ना, एक आपने कहा था घर में सब ठीक है, अब इसने आगे एंट्री पे ही ताला डाल दिया जहाँ से एंट्री करते हैं, और ने ताले तोड़ के ताले भी नए डाल दिए वहाँ पे अंदर।
नहीं, मेन गेट तो आपका संयुक्त है ना?
हाँ, वो घुसने ही नहीं दे रहा।
नहीं, मेन गेट आपका सही है कि अलग अलग है?
नहीं नहीं एक ही है।
एक ही है तो ताला कैसे डाल देगा?
हाँ वहाँ भी इसने ताला डाल दिया और अंदर भी ताले बदल दिए, घर के ताले बदल दिए।
अब आप आए हो वहाँ दिल्ली से जहाँ गए मेरे बाहर से?
नहीं मैं तो यहीं बैठी हूँ दुकान के आगे, वो घुसने ही नहीं दे रहा, अपनी दुकान बंद करके ताया के घर चला।
नहीं आप अंदर घर में नहीं देता?
अंदर कहाँ घुसने दे रहा, चाबी ताला लगा के गए थे इसीलिए तो आपको भेजा था मैंने ताला दिखाने के लिए।
मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर से बाहर
जी मैं हस्बैंड के पास गई हुई थी, मैंने आपको बताया तो था, फील्ड में है ना हस्बैंड जम्मू।
हाँ
जी मैं आई हूँ अब तो ये अंदर नहीं जाने दे रहा, ताला लगा के बराबर वाले ताया के घर जाके बैठ गया, पूरा महल्ले में इन्हें गाली गलौज सीन करके और ताला लगा के चला गया यहाँ से। हम गैलरी में बैठे हैं, आप एक बार आइए तो कम से कम आके घर में बैठ के आपने कहा ना बातचीत मसला है तो बातचीत तो करेगा तभी तो बात होगी। आप बताइए बातचीत होगी या नहीं होगी, या बातचीत ही नहीं करना चाहता आप बताइए?
नहीं नहीं मैं देखता हूँ,
बातचीत तो कराए हमारी बैठ के आप दो लोग भेज दिए क्या बैठ के बातचीत करें आके?
बिल्कुल
हमें कोई लड़ाई नहीं है, हमारे पास कोई हथियार थोड़ी ना, हम कोई गुंडे थोड़ी ना है। आइए कह रहा है एफ आई आर करा रखी मैंने, तो मैंने कहा एफ आई आर किस बात की करा रखी भाई, हम तुमने हमारे
भाई बहन का मामला है।
आपने तो कहा था बैठ के बात करिए आप आपस में आज, ठीक है मैं इसीलिए बातचीत करने आई हूँ, आप आ जाइए या तो आप अकेले आ जाइए, आप बड़े हैं।
नहीं नहीं मैं बताता हूँ अभी
जी घर खुलवाइए, वहाँ बैठ के सब बातचीत होगी, खानदान के दोनों तरफ के लोग बैठेंगे, ननिहाल भी ददिहाल भी सब बैठेंगे, ठीक है? हमें बातचीत चाहिए, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, पहले भी झगड़ा नहीं चाहिए था हमें, ठीक है आप आ जाइए प्लीज, एक ये सोच के लड़कियों की मदद कर दीजिए।
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ।